मेरे निकटतम मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 16 अक्टूबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आज शुक्रवार है और शुक्रवार की शुरुआत मुझे कुछ सूचनाओं के साथ करनी होती है। तो पहले कुछ सूचनाएं। सूचनाएं यह है कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं दी प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं वे कल आपको एज इट इज़ मिलेंगी। साथ ही आपको योजना के दो आर्टिकल पढ़ने को मिलेंगे, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का, और इसी तरह से कुरुक्षेत्र के भी आपको दो आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे जिनमें एक हिंदी का होगा और एक इंग्लिश का। और इसके साथ ही हम लोग एक वीकली क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है, ताकि आप समझ सकें कि मुख्य परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक स्तर की हो गई हो तो आप उत्तर लिखने का अभ्यास भी कर सकें। तो दोस्तों आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे मीडिया और जन आक्रोश इस विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले जो सूचनाएं हैं उन्हें देख लेते हैं। इनमें एक सूचना तो छोटी सी सूचना है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस अवसर पर भानु अथैया जी को याद करना ही चाहिए। भानु अथैया जिनका कल निधन हो गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भानु अथैया जी भारत की वो पहली महिला कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं, या यूं कह लीजिए कि जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला। जो गांधी फिल्म आई थी 1983 की फिल्म थी लॉर्ड एटनबरो की, ये बहुत प्रसिद्ध फिल्म हुई, बहुत प्रसिद्ध फिल्म, इसकी बड़ी चर्चा होती थी। और उस समय तो हम लोग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे तो अक्सर इस फिल्मों की खूब अच्छे से तैयारी करते थे। इंटरव्यू में भी इस पर पूछा जाता था, प्री एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता था, और मेंस में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। तो उस फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइन भानु अथैया जी ने की थी। तो बस थोड़ा सा आप नाम स्मरण रखें। दोस्तों एक जो बड़ी खबर है वो खासकर जोजी ला को लेकर है। न्यूज़ में आप लोगों ने सुना होगा, और खासकर अखबारों में तो इसे इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा जरूर की गई है कि एक टनल, एक सुरंग का काम शुरू किया गया है। और ये जो सुरंग है ये बेसिकली यूं कह लीजिए कि लेह क्षेत्र को जम्मू से जोड़ेगी। ये जो पास है ये कह लीजिए आप दर्रा, इसके बारे में मैं आपसे आगे अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। बेसिकली ये 14 किलोमीटर मोटे तौर पर ले लीजिए एक लंबी सुरंग बनना है, और ये जो दर्रा है, जो पास है, ये कश्मीर के सोनमर्ग और लद्दाख के द्रास के बीच स्थित है। थोड़ा सा आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में इसी तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कश्मीर के सोनमर्ग और लद्दाख के द्रास के बीच स्थित है। अब आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि कश्मीर का एरिया है, ठीक है, लद्दाख का एरिया है, लद्दाख में अभी क्या चीजें हो रही हैं आपको बहुत अच्छे से मालूम है, हमारी खासकर सुरक्षा की दृष्टि से, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो ये 14 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनेगी, और इस सुरंग के बन जाने के बाद ये जो दर्रा है इसको अभी तक पार करने में जो 3 घंटे का समय लगता था वह अब केवल घटकर 15 मिनट रह जाएगा। यानी कि सुरंग के जरिए हम इस दूरी को बहुत जल्दी पार कर लेंगे, पहली बात। तो अब आप इसको सुरक्षा की दृष्टि से समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है कि हमें जब भी आवश्यकता पड़ेगी रसद की, सेना की, उपकरणों की, तो हम फट से वहां तक पहुंचा सकेंगे, हमारी स्पीड तेज हो जाएगी। दूसरी बात कि यहां ठंड के दिनों में आप सोच करके देखिए जो टेम्परेचर है वो -45 डिग्री तक चला जाता है। -45, जो दिल्ली में रह रहे हैं उनको मालूम है कि जब 4-5 डिग्री, केवल 4-5 डिग्री माइनस नहीं है, में टेम्परेचर आता है ठंड के दिनों में, तो क्या हालत हो जाती है, दांत बजने लगते हैं, और वहां तो -45 डिग्री। तो सीधी सी बात है कि फिर तो आवागमन तो पूरी तरह से बंद ही हो जाता है। अब इस सुरंग के बन जाने से 12 महीने ये आवागमन चल सकेगा, तो नो डाउट कि सुरक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही। और आप सोच करके देखिए कि जो वो पूरा का पूरा क्षेत्र है, आर्थिक दृष्टि से भी ये जो सुरंग है वहां के लिए कितना बड़ा वरदान सिद्ध होगी। तो दोस्तों ये तो थोड़ी सी जानकारी मैंने दी है जोजिला के बारे में। अब मैं थोड़ी सी कुछ बातें इस संदर्भ में करना चाहूंगा। देखिए, जब हम दर्रा की बात करते हैं, दर्रा, तो ये दर्रा क्या है? दर्रा और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है कि पर्वतों पर जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स पर जो रास्ते होते बने होते हैं, उन्हें हम दर्रा कहते हैं, है ना। एक नेचुरल रास्ते बन जाते हैं। और इसी को जब आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, खासकर प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत, पेनिनसुलर प्लेटू के तहत, तो आपको मालूम है कि आप जब प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन करते हैं तो उसमें एक विभाजन आता है दक्कन का पठार, और दक्कन के पठार के तहत आप डेक्कन ट्रैप के बारे में पढ़ते हैं, और इसके बाद फिर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, वहां है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, वहां यही पासिस, यही दर्रा घाट बन जाता है। याद रखिए कि ये जो घाट है ये नदियों के घाट नहीं है, है ना, कि बनारस के घाट बड़े प्रसिद्ध है। नो, ये नदियों के घाट नहीं है, ये पहाड़ों के घाट हैं। बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं यार, वहां तो बहुत ऊंचे ऊंचे घाट हैं, वहां तो गाड़ियां एकदम स्लो हो जाती हैं, चढ़ना मुश्किल हो जाता है। ये पर्वतों के घाट हैं, इन्हीं को दर्रा भी कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके ज्योग्राफी की दृष्टि से, उस पर आपकी तैयारी होनी चाहिए। हालांकि यहां जो हम जिस घाट की बात कर रहे हैं वो उनसे हटकर है, है ना। यहां तो हम बिल्कुल एकदम आप कह लीजिए नॉर्थ ईस्ट में चले गए हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। कुछ बातें मैं यहां आपको बताना चाहूंगा जो जोजिला से ही संबंधित है। आज के अखबारों में आप पढ़ेंगे तो शब्द आपको मिलेगा जोजिला दर्रा या जोजिला पास। यहां थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। जो वास्तविक शब्द है वो है जोजी, जेड ओ जे आई, जो जोजी। जो ला है एल ए, जिसको हमने इसमें सटा दिया है, वो अलग है। ला का मतलब तिब्बती भाषा में पास ही होता है, दर्रा ही होता है। इसका जो मूल नाम है वो है जोजी, और ला शब्द अलग है, इसका मतलब हुआ जोजी दर्रा, लेकिन लिखने में आ गया है वो जोजिला दर्रा। तो ये इसके बारे में आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, है ना, क्योंकि आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से एक नाम आपने और सुना होगा, नाथूला, नाथूला। तो नाथू अलग है और ला अलग है, है ना। तो इसका मतलब है नाथू पास, ये सिक्किम में है, सिक्किम से जो तिब्बत की सीमा है उसको जोड़ता है। और 3-4 साल पहले की बात है शायद, अब ये दर्रा भी खोल दिया गया, और इसके जरिए भी अब हम भारतीय बाकायदे मानसरोवर की यात्रा पर जा सकते हैं। और ये खुशकिस्मती है कि मैं और मैडम बाकायदे यहाँ नाथूला दर्रा पर हम लोग गए हुए हैं, बिल्कुल बॉर्डर तक हम लोग पहुँचे, और ये बहुत ही खूबसूरत बर्फों से ढका हुआ क्षेत्र है नाथूला दर्रा। इसी तरह का एक और दर्रा है बारालचा ला, ये लेह और मनाली को जोड़ने वाला राजमार्ग है। ये जो जोजिला दर्रा है आपके, इसके बारे में आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। कभी कभी होता है कि प्री एग्जामिनेशन में हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि 1947-48 में भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध हुआ था, विभाजन के बाद ही हुआ था, और कश्मीर का विलय का संबंध इस युद्ध से रहा है। तो उधर कश्मीर के, कश्मीर साइड में जब पाकिस्तान की सेना थी, उसने इस आपके हमारे जोजिला पर अधिकार कर लिया था, कब्जा कर लिया था, लेकिन भारतीय सेना ने फिर बहुत जल्दी इसे छुड़ा लिया था। और इसके लिए जिस कंपेन या कह लीजिए अभियान की शुरुआत की गई थी, उसका नाम है ऑपरेशन बायसन, ऑपरेशन बायसन। तो बस दिमाग में ये रखिए कि जो ऑपरेशन बायसन है उसका संबंध इसी जोजिला दर्रे को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराने से था। दोस्तों, लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर यह दर्रा है, और बकायदे हिमालय में स्थित है, उसका जो द्रास क्षेत्र है लद्दाख, वहां ये दर्रा है। और एक पॉइंट कभी कभी इस तरह से भी प्री एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक है श्रीनगर लेह राजमार्ग, श्रीनगर लेह राजमार्ग NH1, इसका संबंध इसी से है, NH1 से। तो दोस्तों, ये दर्रे के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, मीडिया एवं जन आक्रोश। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे, खासकर अभी मीडिया ने सुशांत हत्या आत्महत्या के मामले के बाद से लेकर के जो ड्रग्स तक का मामला चला और इसके बाद उसमें पूरे के पूरे बॉलीवुड को घेरने की कोशिश की गई। बॉलीवुड वाले फिर से अब कोर्ट में गए हैं और इस तरीके उन्होंने अपनी मांग की है। उसको देखते हुए मित्रों, सच पूछिए तो अब ये जो मीडिया है, मीडिया और शिष्टाचार, मीडिया और जनाक्रोश एक टॉपिक के रूप में उभर रहा है मुख्य एग्जामिनेशन की दृष्टि से। योजना पत्रिका का अभी एक एडिशन आया था पिछले महीने का, की जो योजना आई है, नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा, इसके कुछ आर्टिकल्स मैंने आप सबको प्रोवाइड किए हैं। सिविल सर्विस में मैंने ये देखा कि मेन एग्जामिनेशन में कि जब इस तरह के कुछ विशेषांक जैसे निकलते हैं, हालांकि उनका हर अंक किसी न किसी एक विशिष्ट विषय को लेकर के होता है, लेकिन जब इस तरह के कुछ विशेषांक निकलते हैं तो दिमाग एकदम क्लिक सा करता है कि अच्छा अच्छा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि यह अंक आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये अंक आप सबके पास होने ही चाहिए। और इसी अंक का एक आर्टिकल मैंने आप सबको प्रोवाइड किया था, मीडिया संचालन, लोकाचार, मूल्य और निष्ठा, ये मैंने आपको प्रोवाइड किया था, लेकिन इसमें मीडिया को ही लेकर के एक और लेख था जो मैंने आप लोगों को नहीं दिया है, नैतिकता की कसौटी पर मीडिया। कुल मिलाकर यह है कि मुख्य परीक्षा की दृष्टि से खासकर मीडिया और जनाक्रोश एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुझे मालूम पड़ रहा है। इस पर दोस्तों बहुत विस्तार के साथ बात करने का समय फिलहाल नहीं है, लेकिन संकेत के तौर पर मैं आप लोगों से एक दो बातें कहना चाहूंगा। आप देख रहे हैं खासकर ये दो कह लीजिए कि जो माध्यम है अभी सबसे ज्यादा जन आक्रोश के शिकार हैं। पहला तो यह है कि जो टीवी चैनल्स हैं, और टीवी चैनल्स की भी जब हम बात कर रहे हैं तो न्यूज चैनल्स की हम बात कर रहे हैं, है ना, कि किस तरीके से घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, सच्चाई से वो घटनाएं बिल्कुल दूर रहती हैं और उनका अपना एक मकसद होता है, और मकसद भी कोई शुभ नहीं होता, अशुभ मकसद होता है, चाहे कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करना, चाहे कोई राजनीतिक संकट खड़ा कर देना, चाहे किसी जाति धर्म विशेष के खिलाफ विद्वेष की भावना पैदा कर देना, आक्रोश बढ़ा देना, जो भी स्थिति रही हो। कहीं कहीं अगर कोर्ट में मामले चल रहे हैं तो आप देखिए कि मीडिया ट्रायल के रूप में भी उतर आते हैं और अपनी तरफ से जजमेंट देने लगते हैं कि हाँ ये हत्या की गई है, वो की गई है, उसने ये किया है, फलाने ने ये किया है, जबकि सच्चाई बाद में पता लगती है कि कुछ भी नहीं है। तो आपने देखा कि इसको लेकर के अब हो ये रहा है कि मीडिया के प्रति जनाक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। चलिए कोर्ट में मामला गया है वो अलग है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के टिप्पणियां की हैं वो भी हम देख रहे हैं। तो एक तो दूर जो टीवी चैनल्स हैं इनके प्रति आक्रोश है, और दूसरा सोशल मीडिया में भी आप देख रहे हैं कि उनका किस तरीके से गलत इस्तेमाल होने लगा है, और इसको लेकर के सच पूछे तो अब जो पब्लिक है वह भी कहीं ना कहीं चिंतित है। और अब उसमें जो मैसेज आते हैं, यूट्यूब पर चीजें दिखाई जा रही है, व्हाट्सएप पर मैसेजेज आ रहे हैं, उनके प्रति अब उनमें शक की भावना होने लगी है कि यार ये कितना सच है और ये कितना झूठ है। इसी के तहत आपने देखा कि कुछ टीवी चैनल्स के प्रति, कुछ जो बड़े बड़े हमारे कॉरपोरेट घराने हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने यह निर्णय लिया है कि नहीं, हम अब इस चैनल को अपना कोई भी विज्ञापन नहीं देंगे। एक अच्छी बात है, क्योंकि देखिए जो जनतंत्र है, जो लोकतंत्र है, अगर उसमें जनता चुपचाप बैठी रहेगी तो तंत्र काम नहीं करेगा। जनतंत्र का मतलब ही है कि जहां गलत हो रहा है वहां जनता अपने आक्रोश की एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक लोकतांत्रिक तरीके से, एक वैध तरीके से अभिव्यक्ति करे, और इसीलिए लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उसकी आत्मा माना जाता है। अगर आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म कर देंगे तो लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। तो इसी खासकर बिंदु को ध्यान में रख करके मैंने इस विषय को आज के लिए चुना है। चूंकि वक्त कम होता है तो मैं डिटेल में तो आप सबसे बात नहीं कर पाता, लेकिन कम से कम यदि मैं आपको विषय सुझा देता हूं और उसके कुछ सूत्र आपको उपलब्ध करा देता हूं तो मेरी समझ से आगे की जो तैयारी है आप सब अपने स्तर पर कर सकते हैं और करने लायक आप हैं। और इसको लेकर के आज बकायदे दैनिक भास्कर में एक एडिटोरियल कमेंट भी लिखा गया है जो मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, अभिषेक, मोहित कुशवाहा, हिमांशु, सुरभि चौहान राजस्थान से और हेमराज वर्मा, आप सबका बहुत बहुत आभार। मुझे एक मेल प्राप्त हुआ है सुनील सुतीक्षण से, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में फाइनली सफलता हासिल की है। तो सुनील, इसके लिए एकेडमी की मैं पूरी टीम की ओर से और अपनी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और बहुत ही बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा, दो दिनों के लिए मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आप सब अपना अपना ख्याल रखें, अपने अपने लोगों का ख्याल रखें। नमस्कार।